परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मैं तेरी उल्फत का प्यासा हूँ मेरे खुदाया, मेरे यीशु तुझसा नहीं देखा कभी कोई दूजा। नजर की तो ये जिंदगी मेरी हो गई पूरी। मैं तेरी उल्फत का प्यासा हूँ मेरे खुदाया, मेरे यीशु तुझसा नहीं देखा कभी कोई दूजा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रहते हुए आनंदित हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने और उसमें से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रियो, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नियमित श्रोताओं के साथ साथ में उन मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए अति आवश्यक और बहुत ही लाभकारी है। तो क्यों ना आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम नीति वचन की पुस्तक में से आपके वचन को सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए और ऐसा होने दीजिए ताकि हम में से हर एक जन अपने जीवन में आपकी आशीषों को महसूस कर सके। इस घड़ी हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आप हमारी सहायता और मदद करें। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि हमने देखा है कि एक युवक को बुद्धि अर्थात प्रभु यीशु की शिक्षा ग्रहण करना है। जी हाँ, बुद्धि तो सड़कों पर से अपने शिष्यों को लेकर आती है। बुद्धि नम्रता, दीनता, खराई और इनके विपरीत घमंड के विरुद्ध बहुत कुछ कहती है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आप मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक उसके 11 अध्याय को निकाल लीजिए। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोप के दिन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। मित्रों, क्या यह पद पढ़कर आपको लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी स्मरण नहीं आती है? दोनों ही की मृत्यु हो गई और धनवान मनुष्य के धन से प्रकोप के दिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, परंतु उस कंगाल मनुष्य को उसकी धार्मिकता ने अब्राहम की गोद में पहुंचाया। धन पर आश्रित रहने वालों की प्राथमिकताएं यथा उचित नहीं होती। धन में गलत कुछ नहीं है, परंतु हमें यह स्मरण रखना है कि उसकी सीमा होती है। इस संसार में तो धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु आने वाले संसार में धन से कुछ भी पाना संभव नहीं है। नीति वचन 11 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। यदि हम दुष्ट के स्थान पर नियम विरोधी कहें तो इसका अर्थ और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। नीति वचन 11 उसके 7 और 8 पद में लिखा है, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। जी हाँ, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। इससे आपको हामान का स्मरण नहीं होता? उसके विपरीत एस्तेर का मामा मोर्दकाय एक धर्मी जन था जो संकट से उबारा गया था। हम नीति वचन 11 के 9 पद में पढ़ते हैं, भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। भक्तहीन के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है पलटकर उत्तर देना। उस युग के नाटकों में नायक को संकेत दिया जाता था और वे अपनी भूमिका की कथोपकथा अर्थात डायलॉग का उच्चारण करते थे। अतः जब धर्म के क्षेत्र में किसी के लिए यह शब्द काम में लिया जाए तो उसका अर्थ है कि वह ढोंगी है। वह कहता है हल्लेलुया, यह की स्तुति करो, को यह उसका शाब्दिक उच्चारण मात्र ही है। वह केवल एक भूमिका निभा रहा है। वह परमेश्वर की स्तुति मन की गहराई से नहीं कर रहा है। भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। वह आपकी मित्रता का स्वांग रचता है, परंतु अपना पाप छिपाने के लिए आपकी पीठ में छुरी भोंक देता है। इस संदर्भ में आपको बाइबल में किसका स्मरण आता है? पोतीफर की पत्नी, जिसने अपना अपराध छिपाने के लिए यूसुफ पर दोष डाल दिया। अब एक सरकारी अफसर के सामने एक दास पर कौन विश्वास करता है? जी हाँ, यूसुफ के लिए कुछ भी कहना व्यर्थ था, क्योंकि उसे तो प्रतिवाद का अवसर भी नहीं दिया गया था। दुर्भाग्य से हम कलीसिया में भी ढोंगियों को पाते हैं जो अपने प्रतिवाद में अनर्थ बातें करते रहते हैं। मैं सदैव ऐसे मनुष्यों से डरता था जो एक सेवक के मुंह पर तो मीठी बातें बोलते हैं, परंतु उसके पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। मेरे मन में सदैव उनसे बचने का भय बना रहता है। जी हाँ, वह वास्तव में अपने जीवन की किसी न किसी बुराई को झांकने का प्रयास करता है। समय के साथ साथ मुझ पर यह प्रकट हो गया कि ऐसा करना परिस्थिति का उचित मूल्यांकन है। यह वचन ऐसे ही स्वांग के बारे में हमें कह रहा है। नीति वचन 11 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। मैं इस वचन के द्वारा दाऊद और शाऊल में तुलना करना चाहता हूँ। दाऊद के राज्य में इसराइल का यरूशलेम नगर एक महान नगर हो गया था। राजा शाऊल के निधन पर अधिक विलाप नहीं किया गया था। जी हाँ, हम आगे देखते हैं नीति वचन 11 उसके 12 पद में, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। मेरे विचार में दाऊद इसका एक अच्छा उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुलेमान के जीवन पर दाऊद के जीवन का कैसा गहरा प्रभाव पड़ा था? सुलेमान की माता बैतसबा के साथ दाऊद के पाप के दाग की अपेक्षा दाऊद का जीवन एक आदर्श जीवन था। आपको स्मरण होगा कि दाऊद अबशालोम के विद्रोह के कारण यरूशलेम से चला गया था। तब मार्ग में शाऊल का एक कुटुंबी शिमी उसे कोस रहा था। दाऊद का सेनापति योआब उसे मार डालना चाहता था, तो दाऊद ने कहा, नहीं, उसे अपने मन की बात कहने दो। अति संभव है कि यह मेरे लिए परमेश्वर का दंड हो। समझदार मनुष्य चुपचाप रहता है। आपके साथ भी ऐसा समय होता होगा जब मनुष्य आपके बारे में अशुभ बातें करते हों, आपके चरित्र पर कीचड़ उछालते हों। केवल आप शांत रहें, परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, जैसे उसने दाऊद की परिस्थिति को संभाला था। मेरे मित्रों, इस पुस्तक में ये अति उत्तम सिद्धांत हैं। युवाओं के लिए ये मनन हेतु अति उत्तम पुस्तक है। आज युवाओं में सच्ची आत्मिक जागृति दिखाई देती है, और मैं चाहता हूं कि वे नीति वचनों पर भी ध्यान लगाएं। इनके द्वारा वे प्रभु यीशु के निकट आएंगे, क्योंकि बुद्धि की पाठशाला का संचालक वही है, और बुद्धि ही के द्वारा उसका अस्तित्व है। नीति वचनों से युवाओं को बुद्धि प्राप्त होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम में बुद्धि की कमी है। हम में बौद्धिक स्तर तो बहुत ऊंचा है, परंतु बुद्धि बहुत कम है। नीति वचन 11 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। लुतराई करने वाला मनुष्य वह है जो किसी को हानि पहुंचाने की बात करता है। कभी कभी उसकी बात सच भी होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह किसी से कुछ कहे। यदि उसने किसी भाई को पाप में देखा है, तो वह उसके पास जाकर अकेले में उससे बात करे। वह सबसे उसकी चर्चा ना करे। परंतु लुतराई करने वाला क्या करता है कि सबके पास जाकर के इन बातों को बताता है। नीति वचन हमें सिखाती है कि हमें ऐसा नहीं करना है। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आपको सम्मति की आवश्यकता होती है। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने दानियल को राजा नबूकदनेस्सर का परामर्शदाता बनाया था। उसने नबूकदनेस्सर की बहुत सहायता की। वह राजा कुस्रू का भी परामर्शदाता था, और कुस्रू को उससे अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ था। नीति वचन 11 अध्याय के 15 पद में लिखा है, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता वह निडर रहता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है। वह देखेगा कि उसने बड़ी भारी भूल की है, परंतु परदेशी के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति है। आप जानते हैं वह कौन है? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसने आपके और मेरे पाप का ऋण चुकाया। उसे वह भयानक दंड चुकाना पड़ा। उसका यह अनुभव भविष्यवाणी के भजन 69 के पद 4 में व्यक्त है, जो आकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। और तब यशायाह में भी उसका वर्णन है, 53 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। दंड चुकाना अनिवार्य था और प्रभु यीशु ने उसका उत्तरदायित्व तो उठाया। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहाँ मजदूरी अर्थात दंड जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए उठाया, आपके लिए उठाया, यह कैसा अद्भुत उपकार है। डॉक्टर आयन साइड ने लिखा, उसने काठ पर मेरा दंड उठाया और अब जमानतदार और पापी दोनों मुक्त हैं। उसने मेरा स्थान ले लिया है। जी हाँ, जिस पाप की सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, प्रभु यीशु ने मेरे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली और मुझे जीवन दान दिया है। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय के 16 पद में लिखा है, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। इससे मुझे रूत का ध्यान आता है। वह एक गरीब विधवा थी, परंतु उसने अपना सम्मान बनाए रखा। रूत 3 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं कि बोवज ने उससे कहा, मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। संपूर्ण बेतलहम जानता था कि वह पुरुषों के संबंध में ही नहीं, हर एक बात में अपना सम्मान बनाए रखती थी। इस पद का दूसरा भाग बोवज के संबंध में है, उग्र लोग धन को नहीं खोते। मेरे मित्रों, आज भले स्त्री की एक बहुत ही अच्छी पहचान है कि वह अपने सम्मान को नहीं खोती। नीति वचन 11 अध्याय उसके 18 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यहाँ पाप और धार्मिकता में विषमता दर्शाई गई है। दुष्ट और मन के टेढ़े मनुष्यों को दंड दिया जाएगा, उनका बचना संभव नहीं है। विश्वासी की धार्मिकता प्रभु यीशु की धार्मिकता है, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु की धार्मिकता है, इसलिए हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 24 पद में हम इसे पाते हैं। यहाँ अब हम देखते हैं एक अति उत्तम नीति वचन है, 11 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथून में सोने की नत पहने हुए सुअर के समान है। बहुत गंभीर बात कही गई है, यह सच है। ऐसी स्त्रियां बहुत हैं, वे सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु वे विवेक नहीं रखती, और इसलिए उनके लिए कहा गया है कि थूथून में सोने के नत पहने हुए सुअर के समान है। तब हम आगे पढ़ते हैं नीति वचन 11 उसके 23 पद में, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। शांति और आनंद पाने के लिए मसीह के साथ उचित संबंध होना आवश्यक है। यदि हमारा संबंध उचित नहीं है तो आप आशा न करें कि आप शांति और आनंद प्राप्त करेंगे। नीति वचन 11 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यहाँ असंगत परंतु युक्ति युक्त कथन है। प्रभु ने स्वयं कहा है कि थोड़ा बोने वाला थोड़ा ही काटता है। यह एक सामान्य सिद्धांत है, यह प्रभु को देने में भी प्रासंगिक है। मेरे प्रियो, हम नीति वचन 11 के 26 पद में आगे पढ़ते हैं, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। इस वचन को पढ़कर मुझे मिस्र में यूसुफ का ध्यान आता है। उसने 7 वर्ष तक अनाज एकत्र किया और फिर अकाल के समय संपूर्ण संसार को खिलाया, अपने पिता भाइयों और उनके परिवारों को भी। दाऊद के युग में नाबाल एक कंजूस मनुष्य था। उसने दाऊद के लिए भोजन की व्यवस्था से इनकार कर दिया था क्योंकि वह एक मूर्ख था। उसके नाम का यही एक अर्थ है। उसकी पत्नी अति सुंदर थी और संभवतः पैसों के कारण उसने नाबाल से विवाह किया था। दाऊद ने सदैव उसके चरवाहों की सहायता की थी, परंतु दाऊद के भोजन मांगने पर उसने दाऊद को इनकार ही नहीं वरन उसके संदेशवाहक का अपमान भी किया। दाऊद का क्रोध भड़क उठा, परंतु उसकी पत्नी नाबाल की पत्नी ने भेंट लाकर दाऊद को शांत किया। यह वचन नाबाल के लिए अति उपयुक्त है। इसका आत्मिक अर्थ भी है। अन परमेश्वर का वचन है। अनेक प्रचारक थोड़ा वचन बोते हैं, वे अनेक अन्य विषयों पर प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन पर नहीं। परमेश्वर ऐसे प्रचारकों पर दया करे। मेरे प्रियो, हम सबको ही बीज बोना है, परमेश्वर के वचन रूपी बीज को बोना है, केवल प्रचारकों को ही नहीं। क्या आप बीज लेकर चुप बैठे हैं? आपने अपने पड़ोसियों में वचन नहीं सुनाया है? अपने आस पड़ोस में वचन के प्रसारण में आप एक महान बल बन सकते हैं। ओह, मेरे मित्रों, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सुनकर आपको कोई धन्यवाद कहे तो वह कैसे आनंद की बात होती है। जो उसको बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है, या इस प्रकार से कहें कि वह निर्मोल दे देता है। नीति वचन 11 अध्याय के 27 पद में लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। यह गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 7 पद का एक और प्रमाण है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। नीति वचन 11 के 28 में लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था कि एक किसान को विपुल फसल प्राप्त हुई और उसने नए खत्ते बनवाकर उनमें अनाज रखा, उसमें भरवा दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु प्रभु यीशु ने उसे मूर्ख कहा क्योंकि उसने इस जीवन की तो चिंता की परंतु अनंत जीवन का ध्यान नहीं रखा। यह धन का खतरा है। स्वर्ग में प्रवेश खरीदा नहीं जा सकता। आप चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, आप परमेश्वर के पास जाने के लिए स्वर्ग का टिकट नहीं ले सकते जब तक कि आप उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं, आप दयावंत नहीं बनते हैं। नीति वचन 11 के 30 पद में लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। प्रचारकों के पुत्रों पर सर्वेक्षण किया गया क्योंकि वे प्रायः आलोचना के पात्र होते हैं, परंतु सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि वे बड़े लोग ही बने थे। आज परिवार में मेल मिलाप पर परामर्श सभाओं का आयोजन किया जाता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और ईश्वर प्रायण जीवन जिएं, तो इन सभाओं की आवश्यकता नहीं है। परिवार में धार्मिकता आ जाने से अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। आज व्यक्तिगत गवाही को बहुत महत्व दिया जाता है, यह अच्छा है। मेरे विचार में आज के युग में यह एक अति उत्तम अभ्यास है। परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। तब हम पढ़ते हैं नीति वचन 11 अध्याय के 31 पद में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। लिखा है, देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। जी हाँ, न्याय का दिन आ रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चाहे धर्मी हो या दुष्ट, दोनों को उसका प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय मित्र, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है, आप किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, दुष्टता का या धार्मिकता का। तो आइए आज हम अपने जीवन में एक सही निर्णय लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज आप एक सही निर्णय लेंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ऐसा जुनून तू दे दे, रूल कुदूस से भर दे। ऐसा जुनून तू दे दे, रूल कुदूस से भर दे।